श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 44। श्री युधिष्ठिर उवाच देवर्षि एतद् इच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यद् आत्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे यघम। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री युधिष्ठिर उवाच महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया देव ऋषि हे देवताओं में श्रेष्ठ साधु पुरुष एतत् यह इच्छामा हमारी इच्छा है वेदितुम जानने के लिए तब तुमसे सुव्रत आध्यात्मिक उन्नति के लिए दृढ़ संकल्प यत क्योंकि आत्मजाय अपने ही पुत्र को शुद्धाय जो अत्यंत शुद्ध तथा सम्मानितता पिता हिरण्यकशिपु ने अदात दिया साधवे महान साधु को ही निसंदेह अघम कष्ट। अनुवाद और तात्पर्य ध्यान से सुनिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा हे देवर्षि हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में और उनके शुद्ध भक्त के गुणों के विषय में यदि किसी को कुछ जानना हो तो उसे देवर्षि नारद जैसे अधिकारी से प्रश्न करना चाहिए। दिव्य विषयों के बारे में अज्ञानी के प्रश्न नहीं कर सकते जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3:25 में कहा गया है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। केवल भक्तों की संगति से भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नारद मुनि जैसे भक्त को सुव्रत कहकर संबोधित किया गया है। सु का अर्थ है उत्तम, व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। इस तरह सुव्रत शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता क्योंकि यह जगत सदा से बुरा ही रहा है। शुष्क किताबी ज्ञान से गर्वित भौतिकतावादी विद्वान से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक बात नहीं समझ सकता। जैसा कि भगवत गीता 18:55 में कहा गया है भक्तिया माम अभिजानाति। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति द्वारा तथा किसी भक्त से कृष्ण को समझने का प्रयास करे। अतएव युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल ठीक ही श्री नारद मुनि से प्रहलाद महाराज के विषय में और आगे जानना चाह रहे थे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नितय श्री श्री कृष्ण बलराम और वरिष्ठ आचार्य गणों के श्री श्री चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवी और जो इंटरनेट के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ ही अदृश्य रूप से उपस्थित यहाँ पे सभी देवगणों के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ जो मुझ अधम पतित को जो ये सेवा प्राप्त हुई है श्रीमद् भागवतम जो उत्तम मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएँ हैं उसको मैं ठीक तरीके से जो आचार्यों की वाणी को है उसे एज इट इज दोहरा सकूं। मेरे मुख से ऐसे किसी भी वाणी का प्रयोग न हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत न हो। हरे कृष्णा। तो गत कई महीनों से आप सब भक्तगण इस कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम जो सप्तम स्कंद में ये चौथा अध्याय है, आज 46 श्लोक है इस अध्याय के अंदर में, इसमें आज 44वां है। कल 2 श्लोक लगातार भक्त लेंगे और इस अध्याय की समाप्ति होगी। और आज का जो ये श्लोक है, ये युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। किससे? भगवान नारद जी से, नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न की व्याख्या अब आचार्यों के माध्यम से, आचार्यों के वाणी के द्वारा हम लोग श्रवण करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं युधिष्ठिर उपाज, देवर से एतद इच्छामो वेदितुम तव सुव्रत, यद आत्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे ही अघम। तो श्रील श्रीधर स्वामी पाद जो भागवतम के प्रमुख टीकाकार हैं, उन्हीं के चक्षु से हम लोग भागवतम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका मत है, कह रहे हैं जो ये जो प्रश्न अभी युधिष्ठिर महाराज चौथे अध्याय के अंतिम में प्रश्न किए हैं ना, ये प्रश्न का रिपीटेशन है, प्रश्न को दोबारा पूछ रहे हैं। इसी प्रश्न को युधिष्ठिर महाराज इसी स्कंद में, सातवें स्कंद के प्रथम अध्याय के 48वें नंबर श्लोक में यही प्रश्न, सेम प्रश्न पूछे हैं, सेम प्रश्न पूछे हैं। विद्वेषो दयिते पुत्रे कथम आसिन महात्मने, ब्रूहि मे भगवन येन प्रहलादस्य अच्युदात्मया। कह रहे ब्रूहि मे भगवन, मैं जानना चाहता हूँ हे भगवन। भगवन कहने का मतलब भगवान, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद और श्रील युधिष्ठिर महाराज संबोधित कर रहे हैं नारद मुनि को भगवान, क्योंकि भगवान भगवान नारद मुनि भगवान ही है, जो भगवान के इनकार्नेशन है नारद मुनि। जब आप लोग 24 भगवान के जो अनंत अवतारों में भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन है, उसमें एक नारद मुनि का अवतार है, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे नारद मुनि, आप मैं जानना चाहता हूँ, ब्रूहि में भगवान ये न, कह रहे हैं जो महात्मनि, जो प्रहलाद महाराज जो महात्मा है, महान साधु हैं और हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं, ऐसे प्रहलाद जो अच्युत, प्रहलादस्य अच्युत आत्मजा, जो प्रहलाद जो महान भक्त हैं भगवान के, वो अच्युत में आत्मजा, अच्युत में आत्मता, अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण में अपनी मति आत्मा को जो हमेशा लगा करके रखते हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज, ऐसे महान भक्त के चरण में उसका अपना ही पुत्र, विद्वेषो दैते पुत्र कथम आसीन, किस प्रकार विद्वेषे घृणा किया हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को, जो ऐसे भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्तों में से एक है। अगर बेटा सुपुत्र न हो, कुपुत्र हो, तो बाप अगर डांट दे तो चलता भी है, घर से भगा दे तो चलता भी है। तो इनका प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का इसलिए है, जो बेटा सुपात्र है, भगवान का सुयोग्य भक्त है, और अपने मन को चित्त वृत्ति को भगवान के लगाकर, भगवान में लगा करके बैठे हुए हैं, ऐसे बेटा को भला कैसे ये प्रहलाद महाराज को भला कैसे जो हिरण्यकशिपु ने घृणा द्वेष से देखा और उसको मरवाने का प्रयास किया। और यही सेम प्रश्न इसमें भी बोला गया है। ये जो श्लोक है आज का, कह रहे देवर से एतद इच्छामो, हे देवर्षि ऋषि, हे देवर्षि, हे सुव्रत, सुव्रत करके संबोधन कर रहे हैं, तब एतत वेदितुम, कह रहे मैं आपसे, तब एतत वेदितुम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, युधिष्ठिर महाराज वाला बता रहे हैं, जो तब एतत वेदितुम, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, और इच्छामा यत शुद्धाय, मेरी इच्छा है जो मैं प्रहलाद महाराज के बारे में ये जानना चाहता हूं, जो आत्मजाय शुद्धाय शुद्धाय कर यत शुद्धाय आत्माजाय, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त है यत आत्मजाय, आत्मजाय यानी कि हिरण्यकशिपु के जो आत्मज है पुत्र हैं, और वो कौन है करे साधवे करे महान भक्त हैं भगवान के, वो ऐसे पिता हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने अघम अदात, अघम अघम का मतलब साधारणतया पाप लिया जाता है, लेकिन अश्लोक अश्लोक में शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो यहाँ पे अघम का मीनिंग श्रील प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं जो कष्ट, जो भगवान में अपनी श्रद्धा रति मति पूर्ण श्रद्धा भगवान में फिक्स किए हुआ है, ऐसे महान वैष्णवों के प्रति ये अघम इतना कष्ट कैसे दिया, उसके अपने ही पिता हिरण्यकशिपु, अपने ही पिता, कोई दूसरा पिता नहीं है, अपना ही पिता इसको माने कैसे कष्ट दिया, फिर से दोबारा ये प्रश्न पूछ रहे हैं और यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं जो सुव्रत, हे सुव्रत, तो यहाँ पे सुव्रत कहने का विशेष महत्व है। तो सुव्रत शब्द का मीनिंग हमारे आचार्य श्रील गिरधर लाल जी बता रहे हैं अपने टीका में, सुष्टु व्रतम भगवत उपासना परत्वम यस्य स सुव्रत, कर हैं जिसकी बुद्धि भगवत उपासना परत्वम, ऐसा व्यक्ति ऐसे महान व्यक्ति सुव्रत कहलाता है, सुव्रत बोला जाता है ऐसे महान व्यक्ति को जो हमेशा अपनी मति श्रद्धा रति को हमेशा भगवत उपासना में लगा करके रखता है। उपासना, उपासना का मतलब होता है उप आसन, उप मतलब निकट, आसन मतलब आसन जमाना, तो किसके निकट आसन जमाना, तो भगवत उपासना, भगवान के चरण चरणार बिंद में बैठ करके उनके लीला कथाओं को श्रवण करने में जो अपनी रति मति आसक्ति जो फिट फिक्स किया हुआ है, ऐसे भक्त को सुव्रत बोला जाता है, ये श्रीपाद गिरधर लाल जी बता रहे हैं। तो ऐसे नारद मुनि को संबोधित करके हे सुव्रत, तो यहां पर मैं श्रील प्रभुपाद जी अपना कमेंट्री बता रहे हैं गिरधर लाल जी के यहां से, तो कह रहे प्रश्न किस से पूछना चाहिए, आखिर जो कोई प्रश्न अगर मन में बन जाए तो किस से पूछना चाहिए, तो कह रहे उचित पात्र को देख करके उचित वैष्णव से ही प्रश्न पूछना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी को भी प्रश्न पूछ दे, अगर किसी को कोई प्रश्न आप पूछ दें और उसका वो उत्तर उचित माने सही तरीके से नहीं जानता है ना, तो भी वो कुछ ना कुछ अपनी लाज बचाने के लिए ना, प्रतिष्ठा बचाने के लिए ना कुछ आपको बता देगा, और अगर आपको उनमें श्रद्धा है और वो बात अगर आपने मान लिया तो आप फिर गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इसलिए यहां पर मैं बोला गया है श्रील प्रभुपाद जी स्पेशली बता रहे हैं जो हमें प्रश्न किससे पूछना चाहिए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, को ऐरे गैरे नथ्य खैरी से नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं, जो स्वयं भगवान के इनकार्नेशन है, अवतार हैं, और इस धरा धाम पे केवल और केवल भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। नारद मुनि का क्या पेशा है, क्या आइडेंटिटी है, नारद मुनि ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाने के लिए कोई पास की जरूरत नहीं पड़ता है, आपको मंदिर में आने के लिए गेट पास की जरूरत पड़ती है, अभी गेट पास बन जाएगा, सबके पास आ जाएगा, तो सबको गेट पास की जरूरत होगी, तो गेट पर कहीं भी एंट्री करने के लिए आपको गेट पास की जरूरत होती है, भगवत धाम जाने के लिए भी गेट पास की जरूरत होती है, भक्ति रूपी गेट पास, उत्तमा भक्ति रूपी गेट पास की जरूरत होती है, तो ऐसे किसी भी जगह पे प्रवेश करने के लिए ना गेट पास की जरूरत होती है, लेकिन नारद मुनि को ना भगवान नारायण की तरफ से विशेष कृपा प्राप्त हुआ है जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में वो पहुंच सकते हैं। तो क्या किसी भी में पहुंच सकते हैं, किसी के यहाँ जाकर के मेहमानी और जाकर के अच्छा अच्छा भोजन पकवान खाने के लिए क्या जाते हैं नारद मुनि, करे नहीं, करें गेहे गेहे जन जन, करें नारद जी ने प्रतिज्ञा लिया हुआ है, भागवतम के महात्म्य में बताया है, जो भक्ति का प्रचार गेहे गेहे घर घर में जने जने जन जन में प्रचार करने के लिए ये प्रतिज्ञा किए हैं नारद मुनि। ऐसे भगवान के शुद्धतम वैष्णव जो भक्तगण भक्त हैं उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, तो उनका उत्तर बता रहे हैं, फिर नारद मुनि उत्तर बताएंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कमेंट्री बता रहे हैं कैसे वैष्णवों से प्रश्न पूछना चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसे वैष्णवों से प्रश्न पूछना चाहिए, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तत् जो सनाता सुअपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कह रहे कैसे भक्तों से प्रश्न पूछना चाहिए, तो कह रहे उसका पहला क्वालिफिकेशन सताम प्रसंगात, प्रसंगात प्रसंगात मतलब संग, प्रसंग प्रकृष्ट रूपेण जो संग किया है यानी कि अगाध संग किया है किसका, सताम यानी कि भगवत भक्त जो शुद्ध भक्त है, भगवान के जो अनन्यतम भक्त है, जिनकी श्रद्धा रति मति केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में फिक्स रहती है, ऐसे सताम ऐसे वैष्णवों के जो प्रकृष्ट रूपेण संग किए हैं, और वो भक्त क्या करते हैं, मम वीर्य संविदो संविदो चर्चा करता है किसके, मम मतलब ये भगवान कपिल अपने माता देवहूति को भागवतम के 3.25.25 यानी कि तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय का 25वां श्लोक में ये बता रहे हैं जो कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। कर रहे वो भक्त एक तो उत्तम वैष्णवों का संग करता है और बातें क्या करता है, इधर उधर नेतागिरी का इतना वायरस फैल चुका है इस बारे में वो बातें नहीं करता, वो केवल और केवल मम वीर्य संविदो, वो केवल और केवल भगवान के लीला कथा जो भगवान के अलौकिक कार्य अलौकिक जो लीलाएं हैं जो ऐश्वर्य के बारे में भगवान के लीला कथाओं के बारे में केवल और केवल यही चर्चा करता है। और भवंति हृत कर्ण रसायना कथा, जब ऐसे वैष्णवों को जब हम संग करते हैं ना, सब ऐसे वैष्णवों का जब संग करते हैं तो क्या होता है, भवंति हो जाता है हृदय हृत कर्ण रसायना कथा, हृत कर्ण का मतलब जो हृदय जो है ना, हृदय को और कान को एकदम अच्छा लगने लगता है। भगवान का लीला कथा जब हम श्रवण करते हैं तो हृदय को कानों को तुष्टि प्रदान करती है, और जो भगवान की लीला कथा सुनता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, या कह रहे तत् जो सुनात, कह रहे उसके उस लीला कथा को श्रवण करने से अनुशूलन से क्या होता है, आशु अपवर्ग वर्तमनी, आशु आशु मतलब तुरंत शीघ्र, इसलिए भगवान शिव का नाम आशुतोष है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आशु आशु मतलब शीघ्र ही ये सब काम करने से शीघ्र ही उनका अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग मतलब होता है जो मोक्ष, जो भगवान के धाम को जाने के बारे में जो रास्ता खुल जाता है, अपवर्ग वर्तमनी उस ऐसे अपवर्ग वर्तमनी जो मोक्ष का द्वार जो खुल जाता है, तो उससे हमारे में क्या होता है, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमस्यति, हमारे अंदर में फिर श्रद्धा अटूट श्रद्धा भगवान विश्वास उपन, रति आसक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति उत्पन्न होती है, और ये कैसे उत्पन्न होती है, अनुक्रमस्यति माने क्रमशः यानी कि अचानक पूरा का पूरा क्रमशः इससे श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति होता है। तो ऐसे नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, जब इतना आकर्षण भगवान में स्थिर हो जाता है ना जिस भक्त का, तो वो असली समर्पण करता है। नारद मुनि पूरा का पूरा सरेंडर्ड सोल हैं, उनकी मति भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी जगह पे नहीं लगती। ऐसे भक्तों से जो समर्पण है भक्ति योग में जो दृढ़ हैं, ऐसे भक्तों से उन्हें प्रश्न पूछे हैं। तो सुव्रत प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, सु का मतलब होता है विशेष परम उत्तम, और व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। देखिए हम लोग भी व्रत लेते हैं, व्रत लेते मतलब प्रतिज्ञा करना, एक माता जी, व्रत का मतलब क्या होता है? एक माता जी ने हमसे प्रश्न पूछा था, जो व्रत मैंने बोला था आप जो है एकादशी का व्रत कीजिए, तो कह रहा मैं तो बरसों से एकादशी का व्रत करती हूँ, तो क्या करते हैं? तो माता जी बता रही हैं, मैं दिन भर उपवास करती हूँ और दिन भर काज घर का इधर उधर गप सड़क का करके अपना क्या कहते एकादशी व्रत पूरा हो जाता है। देखिए, व्रत का मतलब ये नहीं होता जो दिन भर में पागल की तरह मैं पेट को खाली रखूं, खाना न खाऊं, खाना को त्याग दूं, भोग करने की जो इच्छा है उसको रोक दूं, रोक करके और इसको बोलूं जो मैं व्रत कर लिया। व्रत का मतलब ये नहीं होता है। उपासना, व्रत का उपवास, व्रत का एक दूसरा नाम क्या है? उपवास। उप मतलब होता है सन्निकट, वास मतलब वास में निकट करना। व्रत का मतलब होता है जो हम भगवान की उपासना करें, भगवान के निकट वास करने के लिए अपने पेट को तो खाली रखें, इंद्रियों को संयमित करने के लिए तपस्या करें, साथ साथ भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करेंगे तभी वो उपवास सफल होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इस दिव्य नामों का उच्चारण अगर हम नहीं करते, भागवतम का अध्ययन नहीं करते, अच्छे वैष्णवों का संग नहीं करते, तो उपवास का फिर क्या मतलब? देखिए, एक व्यक्ति फिर प्रश्न पूछा था जो मांसाहारी नहीं करना चाहिए, तो कह रहे मैं तो जन्म से शाकाहारी हूं, मैंने आज तक उसको मैंने मिथिला में बोला जाता है दुधा वैष्णव। दुधा वैष्णव का मतलब होता है जिन्होंने जन्म लिया आज तक मांस मछली ये सब चीज नहीं खाया, मैं तो दुधा वैष्णव हूं, तो मेरे से बड़ा वैष्णव कौन होगा? इसका मतलब ये नहीं होता किसी कोई व्यक्ति मांस अंडा नहीं खा रहा है तो हम उसको वैष्णव समझ ले। वैष्णव जन वो होता है जो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के लीला कथाओं में उनके चरणार बिंद में अपनी श्रद्धा रति को फिक्स किए रहता है, उनके दिलो दिमाग में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही घूमते हैं और कुछ नहीं घूमता, ये विष्णु जन भगवान के वैष्णव होते हैं। इस जगत में वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है भक्तों। आप सब वैष्णव हैं, पता नहीं मैं कब वैष्णव बन पाऊंगा, जो करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति वैष्णव नहीं बन पाता है। वैष्णव की भले ही ये परिधान में हम घूम रहे हैं लेकिन वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। विष्णु का जन बनना, विष्णु के बारे में 24 आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस होना, ये इतनी आसान बात नहीं है। तो कह रहे हैं जो उपवास करें, मैं तो दिन भर जो है ना मैंने जन्म से ही नहीं कुछ खाया, तो इसका मतलब वैष्णव नहीं है। तो मैंने बोला देखिए, एक पशु है माने एक पक्षी है कबूतर, जानते हैं ना आप, कबूतर जिंदगी में कभी भी मांस नहीं खाया, क्या कबूतर को भी हम वैष्णव समझ लेंगे क्या? आप अगर मांस नहीं खाए तो वैष्णव हो गए, इसका मतलब ये नहीं होता है। कबूतर बहुत ऐसे जानवर है, बहुत ऐसे जीव है जो मांस को कभी देखा भी नहीं, देखता भी नहीं, तो हम उसको वैष्णव नहीं समझ, मैं वैष्णव नहीं कह सकते। वैष्णव वो होते हैं जिनकी श्रद्धा रति भक्ति हमेशा भगवान में लगी रहते। तो हमें व्रत लेना चाहिए, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा करनी चाहिए, आराधना करके मन में ये करना चाहिए संकल्प, जो हमें जीवन में अगर कुछ करना है तो अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना है। कृष्ण भावना भावित अगर हम हो जाएं इस जीवन में ना, तो हमारा जीवन फिर सफल हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित होना, अपने आप को कृष्ण भावना भावित होना, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपने श्रद्धा रति मति को फिक्स कर लेना, यही हमारा व्रत होना चाहिए। भगवान के चरण की सेवा करना, उन्हीं में दिन को बिताना, पूरी रात को बिताना, उन्हीं की लीला कथाओं में अपनी मैंने दिनचर्या को बिताना, उन्हीं में अपना प्रीति रखना, उन्हीं से अपना प्रेम करना, ये हमारा व्रत होना चाहिए, न कि ये व्रत होना चाहिए। कर्मी का क्या व्रत होता है? इतनी ज्यादा तपस्या करता है, अष्टांग योग करता है, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इस जगत की सुख सुविधा के लिए वो कठिन परिश्रम करता है, तो ये इसका व्रत नहीं हुआ। सिद्धि लोग, ये जो योगी लोग होते हैं जो हजारों सालों से तपस्या करते रहते हैं, हिमालय में पानी में जाकर के, अग्नि में जाकर के, गर्मी में जाकर के, और उसकी ध्येय उद्देश्य क्या होता है? सिद्धि को प्राप्त करना। भाई सिद्धि को प्राप्त करके हम करेंगे क्या? ये प्रतिज्ञा, ये व्रत नहीं होना चाहिए। हमारा उत्तम व्रत वही है जो हमारा अगर मन ध्यान श्रद्धा रति भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए ना हमारे मन में, ये हमारा उत्तम व्रत है। हमारा ऐसा कार्यकलाप होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे हमारी श्रद्धा रति भगवान श्री कृष्ण में लग जाए। तो इसके लिए ये कैसे उत्पन्न होगा? तो बोल रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने भक्ति रसामृत सिद्धु में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानु सीलनम भक्तिरुत्तमा। करें अपने आप को भगवान श्री कृष्ण में वही व्यक्ति फिक्स कर सकता है जो अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करता है। अनुकूलेन कृष्णानु, अनुकूल भाव का मतलब क्या होता है? जो हमारे आचार्य शास्त्र वेद पुराण जो है, ऐसे काम करना जो हमारी भक्ति को बढ़ोतरी हो। जैसे मंगल आरती में उठना, तुलसी मैया की उपासना करना, सुबह में रोज नाम जप करना, भक्तों का संग करना, ये सब काम क्या है? अनुकूल काम है, भक्ति उत्पद। ये सब काम हमें क्या होता है? हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है। तो ये अनुकूल काम करना, और कह रहे अनुशीलन करना, किसका? कृष्णानु अनुशीलनम। किसका अनुशीलन करना? कृष्ण का अनुशीलन, मतलब उसको पालन करना, उसको फॉलो करना। जैसे नेता का फॉलोअर फॉलो करता रहता ना, जैसे नेता बोलता है, तो कह रहे हमें कैसा होना चाहिए? कृष्णानुशीलनम। तो कृष्ण से मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने जितने अवतार लिए हैं, सारे अवतार, भगवान के धाम, भगवान के परिकर, इनका हमें अनुशीलन करना है। और अनुशीलन मतलब हमारे जो आचार्य, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वर्तमान आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, साधु गुरु शास्त्र हैं, वो जिस तरह का इंस्ट्रक्शंस आदेश देते हैं, उसके अनुसार, उसका पालन करके हम अपने जीवन को जब चलाएंगे ना, तो हमारे अंदर में भगवान के लिए श्रद्धा रति भक्ति ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। ये तरीका श्रील रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, जो नारद मुनि ये सब ऑटोमेटिक कर चुके हैं। ऐसे नारद मुनि जो सुव्रत बोला गया है, जो भगवत उपासना परत्वम है, जो हमेशा भगवान में मति लगा करके रखे हुए हैं, तो ऐसे अनुकूल भाव से जब भगवान की सेवा करते हैं, तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की प्रसन्नता। भगवान के इंद्रियों की प्रसन्नता ही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। और ये सेवा का क्या उद्देश्य है? ये नहीं कि इस सेवा भगवान की, अगर हम अभी मंदिर आ रहे हैं, तो इस मंदिर में आने से भगवान से हम यह माने रिक्वायरमेंट कर दे, जो मांग कर दे, डिमांड कर दे, जो हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारी बिटिया को अच्छा अच्छा जो है ना सुंदर जो है ना बर की प्राप्ति हो जाए, बहुत सारा धन की प्राप्ति हो जाए, तो ये हमारा मंदिर आना सफल नहीं हुआ। मंदिर आना, सुव्रत लेना, मतलब अहेतु की होनी चाहिए। अहेतु की भगवान में जो भक्ति है ना, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई डिमांड नहीं होना चाहिए। ब्रज की गोपियों जैसे भगवान के प्रसन्नता के लिए ही वो काम करते थे, नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं ब्रज की गोपियां भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा भाव होना चाहिए जो हम भगवान किससे प्रसन्न होंगे, ऐसा काम। तो ऐसे काम सुव्रती, तो अहित की होनी चाहिए और अनुकूल भाव से ऐसा व्रत होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए जो निर्विशेषवाद नहीं होना चाहिए, कार्मिक नहीं होना चाहिए और तार्किक नहीं होना चाहिए अपना का अपना ज्ञान। तो ऐसे तरीके से, इस तरीके से जब भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें सुव्रत, सुव्रत जैसा भक्तों का संग कहा जाता है। तो ऐसे ही प्रसंग भागवतम में 1.2.6 भागवतम फर्स्ट कैंटो का दूसरा अध्याय का छठा श्लोक में श्रील सूत गोस्वामी पाद नैमिषारण्य के ऋषि मुनि को बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहै तो कीय प्रतीहता ययात्मासु प्रसीदति। देखिए सवै पुंसाम परो धर्मो यतुर भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसाम, पुंसाम का मतलब होता है इस जगत के सारे जीव, सारे जीव का एक ही स्वभाव होना चाहिए, जो सवै पुंसाम जितने इस जगत में जीव है ना, सभी जीवों में भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के लिए, माने भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई प्रक्रम करना चाहिए, ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का, उस जीव का भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो सवै पुंसाम ये पर धर्म, सभी जीवों का यही एक धर्म है और कोई धर्म नहीं है, जो उसकी श्रद्धा रति को भगवान में माने फिक्स हो जाए, इससे क्या होगा, अहित की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। ऐसे प्रेमा भक्ति जब जागृत हो जाएगा ना उस व्यक्ति में, तो इससे क्या होगा, ययात्मा सुप्रसिद्धि, ययात्मा आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। जो आत्मा भगवान की सेवा नहीं करता, जो आत्मा, जो जीव भगवत गीता भागवतम नहीं करता ना, वो जिंदगी में कभी भी भागवतम नहीं पढ़ता, भगवत गीता नहीं पढ़ता, भगवान के नामों का जप नहीं करता, साधु संग नहीं करता, उसकी आत्मा या वो जीव कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। कारण ये सब काम करने से ययात्मा सुप्रसिद्धति, ये आत्मा का खुराक है। आत्मा को जब आप भोजन दोगे, सही खुराक दोगे, भक्तों का संग दोगे और इस तरह का जब नेचर रखेंगे, तो हमारी अहित की और अकारण ही जो है भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगा। तो इसमें इस बात को ध्यान रख करके सबई पुंसाम ये व्रत लेना चाहिए। और भगवान के, हमारा व्रत क्या होना चाहिए, एक भक्त का व्रत क्या होना चाहिए, एक भक्त के जीवन में सबसे उत्तम व्रत है जो उसका जिंदगी, उसका 24 आवर अगर भगवान के लीला कथाओं को श्रवण कीर्तन में अगर गुजर जाए ना, तो इससे उत्तम व्रत और नहीं हो सकता। हमारा देखिए 24 आवर क्या श्रवण कीर्तन में गुजरता है, नहीं गुजरता। दिन होते ही शुरुआत होता है चुगली, क्या चपाटी, अरे उस भक्त ने क्या कर दिया किसको, अच्छा उसका ये हो गया, अब अरे कानों को अच्छा लगने लगता है, हम उसमें रम जाते हैं, हमारी मति तो ऑटोमेटिक उसमें चली गई, तो हमारी श्रद्धा रति भक्ति कैसे भगवान में उत्पन्न होगी। कह रहे हैं 24 आवर जो है हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को बोलते हैं एक विदेशी, जो हमें ब्राह्मण बना दीजिए, हमें ब्राह्मण बना दीजिए, मैं भी जो है ना ब्राह्मण बनना चाहता हूं। तो कह रहे हैं तो ब्राह्मण बना दीजिए, तो ठीक है मैं ब्राह्मण आपको बना दूंगा, लेकिन पहले मनुष्य तो बन जाओ। अब मनुष्य बन जाओ तभी तो हम ब्राह्मण बनेंगे। मनुष्य दो पैर में चल रहे हैं लेकिन मनुष्य के काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम मनुष्य हैं। कह रहे हैं सबई पुंसाम, यही जीवों का परम कर्तव्य होता है भगवान के चरणारविंद में भगवान के लिए प्रेम हर जीव का उत्पन्न हो जाए, यही काम करना। तो भगवान के लीला कथाओं को श्रवण करने का यही एक उद्देश्य हमारे जीवन का होता है। तो भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वां अध्याय का 7वां श्लोक में सूत गोस्वामी पाद ये भी नैमिषारण्य के ऋषि मुनि को बता रहे हैं, यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोकमो भयापह। देखिए बता रहे हैं सूत गोस्वामी पाद, यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे, कह रहे हैं यस्याम, यह जो वैदिक ग्रंथ, ये जो वैदिक शास्त्र हैं, जितने वेद पुराण, ये जो वैदिक ग्रंथ भागवतम है, कह रहे हैं इसको, भागवतम इस साहित्य को श्रूयमानायाम,
सिर्फ और सिर्फ केवल श्रवण करने मात्र से। कोई व्यक्ति भागवतम और भगवत गीता को केवल और केवल श्रवण करता है, सुनता है, तो क्या होगा? कृष्ण परम पुरुषे, भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में उनकी क्या होगी? भक्तिर उत्पद्यते पुंसः। वो जो जीव ऐसा काम करता है और भगवान श्री कृष्ण के बारे में इन शास्त्रों से केवल और केवल श्रवण करता है, तो ऐसे पुंसः भक्तिर उत्पद्यते, उनके हृदय में भक्ति का ऑटोमेटिक उदय होगा, भक्ति का बीज अंकुरित होगा। और इस भक्ति के अंकुरित बीज अंकुरित होने से तीन काम होंगे। क्या होंगे? शोक मोह भय अपह। अपह का मतलब होता है दूर हो जाना। शोक, उसके हृदय में जो शोक है, मोह है और भय, ये जो शोक मोह और भय बहुत बड़ा बीमारी है, कभी नहीं जाता है। केवल और केवल भगवान के लीला कथाओं को जो व्यक्ति, भागवतम को और भगवत गीता को, शास्त्रों को जो व्यक्ति पढ़ता है और श्रवण करता है ना, उसी के हृदय से शोक मोह और भय ये गायब होते हैं। कोई डॉक्टर से इसको निकाल नहीं सकता। शोक क्या होता है? शोक पास्ट टाइम में यूज किया जाता है। कोई चीज हमें प्राप्त करने की बड़ी इच्छा है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें शोक होता रहता है। उस चीज को देख करके हमारे मन में ग्लानी होती रहती है, हमारा मन भगवान में फिक्स नहीं रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। और मोह, अपने जन से मोह, अपने धन से मोह, अपने समाज से मोह, देश से मोह, अपने बच्चे से मोह, बीवी से मोह, ये मोह जल्दी खत्म नहीं होता रहता है। कह रहे हैं इस जगत में दो चीजें ऐसा है ना जल्दी खत्म नहीं होता, एक स्त्री के प्रति आसक्ति और दूसरा है धन का लोभ। धन अगर है ना, इस दोनों चीजों से आसक्ति हट जाएगी ना और भगवान में जब आसक्ति फिक्स होगी ना, तभी हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये काम किस से होगा? कह रहे हैं ऑटोमेटिक। सूत गोस्वामी पाद बता रहे हैं कुछ नहीं करना है भैया, केवल और केवल भगवान कृष्ण की लीला कथाओं को श्रवण करो और सताम प्रसंगात करो, आपके अंदर में ये परिवर्तन हो जाएगा। अब इसका अगला श्लोक तुरंत बता रहे हैं सूत गोस्वामी पाद। सह संगीताम भागवती कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मजम सुकम अध्यापयाम आस निवृति निरतम मुनि। कहते हैं जो निवृति निरतम मुनि, ये सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए बताया जा रहा है, जो सुखदेव गोस्वामी पाद इस जगत में आसक्ति नहीं है, एकदम विरक्त चूड़ामणि है, जिनको भौतिक जगत से कोई आसक्ति नहीं है, जिन्होंने अपने मन को, दिमाग को, सारे चीजों को मैंने फिक्स किया है किसमें? अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान के आत्म साक्षात्कार के मार्ग में संलग्न किया है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी पाद भी क्या किए? सह संगीताम भागवतीम कृत्वा, ये जो श्रील व्यासदेव को बड़ी एक मन में लालसा थी, जो मुझे एक कोई पुत्र की प्राप्ति, योग्य पुत्र की प्राप्ति हो, जिसे मैं जो भागवतम जो मैंने सीख रखा है ना, वो भागवतम मैं किसी को दे सकूं, उनके मन में बड़ी लालसा थी। तब भगवान ने बड़ी प्रेरणा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, वो सुखदेव गोस्वामी पाद उनके पुत्र बन के आते हैं। वो ऐसे विरक्त चूड़ामणि होते हैं जो 16 वर्ष तक तो एक तो माँ के गर्भ में रहते हैं, और माँ के गर्भ में रहने के बाद ऐसे विरक्त जो अपने पिता माता की तरफ देखते तक भी नहीं है। करे ऐसे विरक्त चूड़ामणि को भी बाद में सुखदेव गोस्वामी, ये व्यासदेव ने अपने अपने ही शिष्यों के द्वारा श्लोक को गा करके, पढ़ा करके, और सुखदेव गोस्वामी पाद में ना भागवतम के लिए रति उत्पन्न कर दिया, भागवतम के लिए भक्ति उत्पन्न कर दिया। और वही सुखदेव गोस्वामी पाद जो घर से भाग गए थे जब अहो बकीयम स्तन कालकूटम और जिघांसया अपायत अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। जब ऐसे भागवतम के जब श्रवण किए, भगवान की दयालुता के बारे में देखे, भगवान के रूप के बारे में श्रवण किए ना, तो ऐसे विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी पाद भी यहाँ पे आ गए। क्योंकि व्यास देव ने एक व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? जो हमारा एक पुत्र होगा उसको भागवतम में लगाना है, उसको भागवतम समझाना है। व्रत ऐसा लेना चाहिए, व्रत ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हमसे ये ज्यादा धनी हो गया, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करके इससे ज्यादा धनी हो जाए। भाई व्रत ये लेना चाहिए, ये व्यक्ति 64 माला कर रहा है तो मैं 128 माला करूं, मैं उससे ज्यादा अच्छी तरीके से भगवान के चरणारविंद में पूर्ण शरणागत हो जाऊं। ये हमारा व्रत होना चाहिए, ये हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए। प्रतिज्ञा हमेशा, व्रत हमेशा पॉजिटिव साइड में होना चाहिए, न कि निगेटिव साइड में। पॉजिटिव भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा रति अगर उत्पन्न हो जाए, ये हमारा व्रत होना चाहिए। जैसे श्रील व्यास देव जी ने लिया था अपने बेटे को, जो विरक्त बेटा था उनको भगवान में लगाने के लिए, ऐसा व्रत होना चाहिए। तब जाकर के भगवान के लीला कथा में जब मन फिक्स हो जाता है तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसे व्रती। इसलिए यहां पर मैं युधिष्ठिर महाराज सुव्रतम, नारद जी को सुव्रतम संबोधित कर रहे हैं। जो हमारे ये जो सुव्रत हैं, ये नारद मुनि हैं जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, सही सही उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे ही एकादश स्कंद में एक प्रसंग आता है, जो नवयोगेंद्र जो नौ योगी हैं, भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्त हैं, जो वो मिथिला के राजा नीमि को जो है ना प्रवचन देते हैं और कई सारे पाठ बताते हैं, तो उसमें से श्री कवि जो है ना ये श्लोक बोलते हैं, एकादश स्कंद का दूसरा अध्याय का 20वां श्लोक है। एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसत् यथो रोदिति रोति गायति उन्मादवत नित्यति लोक बाह्य। कह रहे एवं व्रत, कैसा व्रत लेना है ये यहां पर मैं बता रहे हैं। कवि श्रीपाद कवि बता रहे हैं, जो एवं व्रत, जो कोई व्यक्ति भगवान के लीला कथाओं को श्रवण करने में, कीर्तन करने में अपनी मति को व्रत ले लिया है, अपनी ध्यान को उनमें फिक्स किया हुआ है, ऐसा व्रत ले लिया है, कह रहे स्वप्रिय नाम कीर्तया। कीर्तया का मतलब कीर्तन, जो भगवान के कीर्तन में अपने प्रिय स्वप्रिया नाम, स्वप्रिय किसका? अपने नाम। हमने स्वप्रिय का मतलब होता है अपना जो प्रिय भगवान श्री कृष्ण है ना, उनके लीला कथाओं को कीर्तन करने में जो ऐसा अनुराग, जातानुरागो, जिसकी इसमें अनुराग उत्पन्न होती है, आसक्ति होती है, रति उत्पन्न होती है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? जब ऐसा व्यक्ति कोई करता है जो इसमें भाव ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है? द्रवित चित्त, द्रुत चित्त उच्च, उसका हृदय द्रवित हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का उच्च स्वर से कोई व्यक्ति बड़े ही अनुराग से नाम लेता है ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है? उसका चेतो दर्पण मार्जन, हृदय का परिवर्तन होता है, हृदय मेल्ट करता है और उसमें भगवान विराजमान होते हैं और उनके आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होता है। कभी वो व्यक्ति उसमें सस माने अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता है तो कह रहे द्रुत चित्त उच्च, कभी वो व्यक्ति उच्च स्वर से गायन करने लग जाता है, कभी बोलता है हसत यथो, कभी वो बहुत तेज से हंसता है, और कभी रोदती, कभी वो रोता है भगवान के वियोग में, सेपरेशन में, और कहते रोती और विक्षुब्ध होकर के भगवान जब मिले नहीं रहते हैं, ऐसे भगवान के विप्रलम भाव में विक्षुब्ध होकर के क्या बोलता है? गायती, गायन करता है, और उन्माद वत, ऐसे गायन करता है जैसे पागल व्यक्ति है और वो एकदम उन्माद से गाता है और ऐसे नाचता है जो एकदम पागल व्यक्ति नाच रहा है। उन्माद यति गायति उन्मादवत नृत्यवत नित्यदि। और लोक बाह्य, जिसको बाह्य जगत का कोई भी भान न हो, ऐसा कई और व्यक्ति देखेंगे जो अगर भगवान के सामने वो नृत्य करता रहता है तो उसकी मन भाव में ये रहता है जो कोई व्यक्ति मेरा जो है ना वीडियो निकाल रहा है तो थोड़ा बढ़िया से डांस कर लूं, है ना, बढ़िया से डांस कर लूं, मेरा फोटो अच्छा आ जाए, तो इसलिए वो नाच करता रहता है, दिखाता है। तो कह रहा है ये ऐसा नहीं, ऐसा नाच नहीं कर रहा, ऐसा नृत्य नहीं है, ऐसा गाना नहीं गा रहा है, जो कर रहे हैं लोक बाह्य, उसका मन ध्यान इस लोक बाह्य बाह्य लोक में है ही नहीं, एकदम भगवान में अपना मन को फिक्स करके और भगवान के लिए नृत्य कर रहा है। तो ऐसा जो भाव उत्पन्न होता है ये कब होता है? जब भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को श्रवण कर कीर्तन करने में अपना व्रत लेंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद माने यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब कवि जी बता रहे हैं नव योगेंद्र में कवि, जो एवं व्रत भगवान के लीला कथाओं को व्रत को ज्ञान करने में अपने आप को लगा देना चाहिए। भगवान के नाम कीर्तन का आश्रय लेकर के, जो हमारे ये नाम ही सभी चीजों की पूर्ति करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोट सकम नाम नम कली कलमस नासनम ना तर पर तर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का बना हुआ जो मंत्र है ना, जो व्यक्ति इसको गाता है, नाचता है, भगवान में अपना मन फिक्स करता है, वो इस जगत से, इस कली कलमस नाशनम, इस कलयुग का कलमस से नाश हो जाता है। और कह रहे नातर परतर उपाय, कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं है भैया, अगर इस भव सागर को पार करना है ना तो कोई दूसरा बोट बना नहीं है, दूसरा कोई नौका नहीं बना, केवल और केवल भगवान की नाम रूपी नौका को सवार होकर के उन्हीं नामों को ग्रहण करके तभी हम भगवत धाम को जा सकते हैं। ऐसा श्रद्धा रति फिक्स करके जो व्यक्ति करता है, ऐसा व्रत लेता है, तो उसमें से एक है, सर्वोत्तम है, अग्रगण्य है, वो कौन है? श्री भगवान नारद जी। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न पूछना एकदम उचित है, जो व्यक्ति से सही व्यक्ति का उन्होंने चुनाव किया और वही व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज एकदम एकदम शुद्ध वैष्णव हैं, स्वयं विद्वान हैं, सब कुछ भगवान के लीला कथाओं के बारे में जानते हैं। उनके मन में जब ये प्रश्न हुआ है तो उनका निराकरण फिर कौन करेगा? जो उनसे उत्तम वैष्णव होंगे तभी तो कर पाएंगे। तो नारद मुनि ऐसे ही उन्नत वैष्णव से, नारद मुनि से माने युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से ये प्रश्न इंक्वायरी करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इस भागवतम के अश्लोक के परपट में यही समझाना चाह रहे हैं, जो हमें प्रश्न ऐसे ही व्यक्ति से पूछना चाहिए और भगवान को जानने के लिए एक सही पर्टिकुलर व्यक्ति, सही पर्टिकुलर भक्तों के शरण में जाकर के चुनाव करना चाहिए और उसी से कभी भी हमें कोई प्रश्न पूछना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछ लेंगे तो अपने सही मार्ग से भी आप भटक सकते हैं, हम सब भटक सकते हैं। तो कह रहे हैं भागवत गीता भी बताता है, भक्तिया माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः। कारण भक्ति के द्वारा केवल और केवल भगवान को जाना जा सकता है, या भक्ति या भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्तों के शरण में जाने से ही, उनके चरणों की सेवा करने से और उनके उनसे आदेश लेकर के, उनसे प्रश्न पूछ के और उनकी आज्ञा का पालन करके ही हम इस भव सागर को पार करके भगवत धाम को जा सकते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य की यही एक वृत्ति होना चाहिए, यही एक व्रत होना चाहिए, जो सुव्रत प्रकृष्ट रूपेण व्रती हैं, जो नारद मुनि ऐसे वैष्णवों से उन्होंने प्रश्न किया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मेरे वाणी से अनेक गलतियां हुई होंगी, तो उस गलती को आप सब भक्तगण स्वयं विद्वान हैं, भक्त हैं, तो सुधार करके कृपया ग्रहण कीजिएगा। वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की।